बाबा ने हम सभी को एक बहुत सुंदर काम दे दिया है, उसको कैसे करें आज उस पे ही चर्चा करेंगे। कौन सी क्यू लगने वाली है कुछ ही समय में, बोलो अमित, तुम्हें याद है क्यों लगेगी अभी हमारे आगे कुछ समय में? याद करो, इतना जल्दी नहीं भूलना चाहिए। मुक्ति दाता मुक्ति दो, आ गया याद। अब माताएं बहने भी बहुत अच्छी तरह इस पे चिंतन करेंगे आज हम सभी मिलकर गहराई से। पहला प्रश्न है, हम सब से अपने से पूछेंगे सभी, क्या हम इस महान कार्य के निमित्त बनने के इच्छुक हैं? बोलो। दो डॉक्टर बैठे बड़े बड़े, किशोर भाई लंदन के सर्जन, जी हाँ, डीपली। क्योंकि जब मनुष्य के सामने कोई लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य स्वयं बनाया जाए किसी के कहने से नहीं, तो मनुष्य उसके प्रति अपने को डेडिकेट कर देता है, समर्पित कर देता है। तो मुक्ति लेने वालों की क्यों लगेगी? मुझे तो एक बहुत अच्छा अनुभव होता है शांतिवन में, विशेष मुझसे मिलने आते हैं लोग, किसी के तन में कोई आत्मा आई होती है, मैं उनसे कहता हूं बोलो क्या चाहिए, सीधा उत्तर कितनों का, मुझे मुक्त करो, बिल्कुल सीधा। मैं तो उनसे अब तक मेरा बाबा कहलवाता हूं 7 बार और कहता हूं ये तुम्हारा मंत्र, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। पर मैं सोचता हूं हमारे पास ऐसी शक्तियां हो, हम दृष्टि देकर वाइब्रेशंस देकर उन्हें मुक्त कर दें, हम एक लक्ष्य बनाएं, हमें ये महान कर्तव्य करना है। सुसाइडल टेंडेंसी, जीव घात करने की नेचर, संकल्प संसार में बढ़ते जा रहे हैं, देखते होंगे आप जहां तहां, और ये आत्माएं भटक जाती हैं, इन्हें पुनर्जन्म नहीं मिलता। अब हमें इन्हें भी मदद करनी है, और यही प्रैक्टिकल हमें स्वयं भी मुक्त होना है और मुक्त करना है। बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य जो सभी को नोट कर लेनी चाहिए, दिमाग में भी और कागज पर भी। कल परसों के ही बाबा जब आए, तुम्हारे चेहरे से शांति खुशी शक्तियां ऐसी दिखाई दें जो दूसरे लोग समझ जाएं कि यही हमें मुक्ति दे सकते हैं। और भी एक दो चीज सुख। अब इसके लिए पहले हमें मुक्त होना होगा। अब किन किन चीजों से लोगों को मुक्ति हमें देनी है? फाइनल मुक्ति से पहले, सभी धर्मों में मुक्ति को अंतिम लक्ष्य माना गया है। बौद्ध धर्म में उसको निर्वाण, जैन धर्म में मोक्ष, हिंदुओं में मुक्ति, किसी में डीप साइलेंस में चले जाएंगे, किसी ने कहा लीन हो जाएंगे, किसी ने कहा परमात्मा के साथ जाकर रहेंगे, भिन्न भिन्न मान्यताएं हर धर्म में चलती आती हैं। पर जब तक कोई मनुष्य यहां मुक्त न हुआ तो कोई गारंटी नहीं क्या कि मरने के बाद मुक्त होंगे? जिंदे मुक्त नहीं हुए, अब देखो गहरी बात है, जिंदे मुक्त होना, लोग कहेंगे मुक्ति तो मरने के बाद मिलेगी, पर मनुष्य को पहले यहां मुक्त होना चाहिए। जब हम सन्यासियों की बहुत अच्छी सेवा करते थे तो मैं उनसे पूछता था, अगर कोई मनुष्य मनोविकारों से यहां मुक्त नहीं हुआ तो क्या वो मरने के बाद मुक्त होगा? होगा? कदापि नहीं। तो कोई भी सन्यासी, तपस्वी, योगी, महान पुरुष मुक्ति के लिए तपस्या कर रहा हो लेकिन वो यहां मुक्त न हुआ हो, अब हमें सोचना है किस किस चीज से हमें संसार को मुक्त करना है और उन्हीं से स्वयं भी लंबा काल मुक्त रहना है। हम मुक्त होंगे तो दूसरों को मुक्त कर सकेंगे। सुरेश भाई, पहला नंबर आपका, किस से मुक्त करना है? सिंपल उत्तर, गहरे नहीं, दुखों से। अब आप सोचेंगे, सभी बहनें भी उत्तर देंगी, विकारों से मुक्त करना है, दुखों से मुक्त करना है, और किस से मुक्त करना है? हैं? चिंताओं से मुक्त करना है। और जो मुरलियां चल गई अभी, ये दो रात को बाबा अव्यक्त बाबा की, सवेरे संडे को फिर अव्यक्त मुरली, समस्याओं से मुक्त करना है। ऐसे नहीं समस्या स्वरूप बने रहे लोग, समस्याओं से कितना चिंतन होता है, कितनी शक्तियां व्यर्थ जाती हैं, और किससे मुक्त? अब थोड़ा गहरा उत्तर, अब हमें किससे मुक्त होना है? पहले देहभान से, जिस पर मुरली चली है, देहभान, देह अभिमान, बीज, और उसके अनेक रूप हैं, और देह अभिमानी बनेंगे तो अनेक चीजें ठीक हो जाएंगी। बहुत बड़ी शक्ति है, यही तो लोगों ने नहीं समझा ना आज तक। समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं, चिंताएं क्यों बढ़ रही हैं, दुख क्यों बढ़ रहे हैं, मानसिक रोग क्यों बढ़ रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है। देह अभिमान के कारण, देह में आसक्ति के कारण, देह के प्रति आकर्षण है। इसके बाद में, और हम सबको किससे मुक्त होना है? पुराने संस्कारों से, व्यर्थ से। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो बाबा का महावाक्य है, व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड करो तो अवार्ड, इनाम मिलेगा। व्यर्थ और निगेटिव संकल्पों को हटाओ तो बहुत बड़ा इनाम देगा बाबा, साथ साथ इनाम मिल जाता है, बहुत सुखी हो जाती है आत्मा, बहुत सुखी हो जाती है। और किससे मुक्त होना है? एक इम्पोर्टेंट चीज योगियों के लिए, सर्व आकर्षणों से। बात केवल देह के आकर्षण की नहीं, बहुत चीजें आत्माओं को आकर्षित कर रही हैं। कलयुग के अंत में माया ने भी पूरा जाल बिछाया है, चक्रव्यूह बना दिया है, धन आकर्षित कर रहा है। हर मनुष्य सोचता है इतना धन तो चाहिए, क्योंकि आवश्यकता है, इच्छाओं को आवश्यकता बना दिया है, हैं इच्छाएं, समझ लिया आवश्यकता है, इतना तो चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों की ओर आकर्षण, और बहुत सारी चीजें जो संसार में हैं उनकी ओर आकर्षण। इन आकर्षणों से हमें मुक्त होना है, मोह से भी मुक्त होना है, क्रोध से भी मुक्त होना है, मैंपन से भी मुक्त होना है, सूक्ष्म मैंपन, इच्छाएं। सबसे गहरी बात जिसकी बाबा चर्चा करते हैं, जो सेवा करने के बाद मान की, नाम की थोड़ी भी इच्छा होती है उससे भी मुक्त, कोई हमें जाने। मुझे बहुत पहले किसी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत पहले की बात है, तब इतनी ज्ञान की भी विस्तार नहीं था। तो एक गुरु, एक उसका शिष्य, शिष्य बहुत कुछ पढ़ता रहता था, शास्त्र ग्रंथ किताबें। गुरु ने उसको कहा, जिसको जानना था भगवान को उसको जान लिया, उसको जानने के बाद और किसी को जानने की जरूरत नहीं। उसी शिष्य को ये बहुत इच्छा रहती थी, मेरा नाम हो, मुझे सब पहचाने, मुझे सब जान जाएं। फिर यही उत्तर था, भगवान हमें जान चुका है और कोई जाने इसकी भी जरूरत नहीं। तो देखिए, हमारे लिए है प्रैक्टिकल, हमने बाबा को जान लिया और बाबा के द्वारा सब कुछ जान लिया। बाबा कहते हैं, मेरे जानने से, मुझे जानने से, मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। और उसने हमें जान लिया, हम कौन हैं? जान लिया या नहीं? भगवान हमें जानता है, मनुष्य जाने या न जाने, संसार जाने या न जाने, इसकी भी जरूरत नहीं। तो हम अपने को मुक्त करेंगे। अगर हमें संसार को दुखों से मुक्त करना है तो पहले खुद लंबा काल दुखों से मुक्त। बहुत अच्छी मुरली सुर में चली थी, सूक्ष्म भी स्पर्श न हो किसी दुख का, सूक्ष्म भी। ऐसी आत्माएं जो लंबा काल दुखों की फीलिंग से मुक्त रही हैं, दुखहर्ता बन जाएंगी, दुखों से मुक्त करने वाली बन जाएंगी, क्योंकि ये खेल अब दिनों दिन बिगड़ने वाला है। संसार का खेल ऐसा चलेगा जिसकी कल्पना शायद हम में से भी किसी को नहीं है, किसी को नहीं है, मुझे भी नहीं है। ऐसा खेल बिगड़ेगा जिसको बाबा मोटे शब्दों में कई बार कह आए, हाहाकार हो जाएगा, रुदन क्रंदन चारों ओर, चीत्कार ही सुनाई देंगी। ऐसे में योगी आत्माओं को दोनों अभ्यास करने होंगे, साक्षी और सकाश देना। साक्षी भी होना होगा, आजकल मूल्यों में बहुत आ रहा है, बॉम्ब्स बने हैं रखने के लिए नहीं। कलयुग का विनाश ही न हो तो सतयुग कैसे आएगा? रात जाएगी तब दिन आएगा, सूरज तो उदय होगा। कलयुग तो समाप्त होगा, कलयुग में कुछ भी बचेगा नहीं। जो माल अंदर है धरती में, आज मैं सोच रहा था, धरती जिसको धरती मां कहते हैं, देखिए हिंदू धर्म में ये मान्यता है, औरों में नहीं, धरती मां, इसके गर्भ में क्या क्या छुपा है? कोयले की खाने, कोयला काला होता है, शायद अब से 500 साल पहले भी लोगों ने देखा हो ये कोयला है, क्या करेंगे इसे बेकार। आज वो कितनी बड़ी संपदा बन गया है, केमिकल्स, उदयपुर में जिंक और कई शायद चीजें जो यहाँ के पहाड़ियों में समाया हुआ है, जो बहुत काम आता है। सोना और हीरे वो तो हैं ही, कितने पानी के स्रोत हैं इस धरती में, कितने स्रोत अंदर बह रहे हैं, नदियां बह रही हैं अंदर। तो ये धरती सचमुच हमारी पालना करने वाली माँ हो गई ना, इसको हम शुक्रिया भी किया करें, इसने हमें बहुत कुछ दिया है। खाने पीने का सब माल कहां से, पहनने के कपड़े कहां से, धरती से फसलें उग रही हैं, जिन चीजों के धागे बन रहे हैं वो भी तो धरती पे ही उगे हुए हैं सब चीजें। तो हम सभी साक्षी सकाश इसकी बहुत प्रैक्टिस करें और दुखों से स्वयं को मुक्त करते चलें। छोटी भी बात फीलिंग में आती है, दुख होने लगता है ना। एक बहुत अच्छी मुरली आ रही है, भावना और ज्ञानी आत्माएं, कुछ आत्माएं भावना प्रधान, कुछ आत्माएं ज्ञानी। भावना वाले बहुत खुश होंगे, बाबा मिल गया, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, मैं तो बाबा के अलावा किसी को याद नहीं करती, वाह वाह। लेकिन कोई समस्या आ गई तो हाय हाय, बाबा की मुरली में है ये सब, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आएगा अभी आप सुनेंगे। माया आ गई तो बाबा बचाओ बचाओ। तो हमें भावनाओं के साथ शक्तिशाली भी बनना है। विघ्नों के पहाड़ गिरेंगे संसार में, सुना है ना ये सब। और हम सबको विघ्न विनाशक बनकर इस सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना होगा। ये मुक्ति, कोई रास्ता नहीं दिखेगा। रोग शोक कितने बढ़ेंगे, रोग मानसिक और शारीरिक, सारी मेडिकल साइंस फेल नजर आएगी। सब हाथ उठा देंगे, हमसे कुछ नहीं हो सकता, वो भी बीमार हो जाएंगे बेचारे, डॉक्टर भी बीमार हो जाएंगे, हिसाब किताब तो उन्हें भी देना होगा या नहीं। ऐसे में विघ्नों से मुक्त और दृष्टि से रोगों को निवारण करना, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, मैंने यहां क्लास में कई बार सुनाई है। विघ्नों से मुक्त वही कर सकेंगे दूसरों को जो विघ्न विनाशक का वरदान ले चुके होंगे बाबा से। और ये वरदान उन्हें मिलेगा जो लंबा काल निर्विघ्न जीवन जीते रहे हैं। देखिए, जीवन जीना सबको नहीं आता। कुछ लोग ऐसे ढंग से जीते हैं अपने संस्कारों के कारण, खुद भी विघ्नों में रहते हैं, दूसरों के लिए विघ्न डालते रहते हैं। आप देख सकते हैं हमने चारों ओर, मनुष्य के कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, बोलने का तरीका होता है, जो वो अपने जीवन को भी विघ्नों से भरा हुआ महसूस करते, होता कुछ भी नहीं अगर वो उनसे ऊपर उठ जाएं, विघ्न है ही नहीं। तो हम ऐसा जीना सीखें जो जीवन विघ्नों से मुक्त चलता रहे, छोटी बातों को विघ्न न बना दें। दूसरी बात, कई लोगों में आदत होती है हर बात को विघ्न, हर बात को समस्या बना लेना। उदाहरण, अब यहां आप सभी एक एक कमरे में कई गए रहते हैं, आपके सामने एक समस्या आती होगी, हंसी की बात है चंद्रिका बहन, खरांटे। एक भी माता खरांटे लेती है, बाकी पांच को सोने नहीं देती। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आराम से सोते हैं, ट्यून बज रही है, बजने दो। समस्या बनाना, समस्या मानना, उससे मन को परेशान कर देना। कोई लोग समस्या पैदा करते हैं, अब ठंड का सीजन है, कमरा के दरवाजा खोल के बाथरूम गए हैं, रात को बंद नहीं करेंगे, ठंडी हवा आने दो। ये नेचर अब दूसरों के लिए कठिनाई पैदा कर सकती है। हम अपने को भी चेंज करें और छोटी बातों को, और दूसरों के लिए विघ्न ना डालें। जो किसी के लिए विघ्न नहीं डालते उनका जीवन भी विघ्नों से मुक्त रहता है, और जो दूसरों के लिए विघ्न पैदा करते हैं वो विघ्नों में जीवन बिताते हैं। नीचे एक भाई अपनी गाड़ी ऐसी जगह खड़ी कर देता था कि दूसरों का रास्ता बंद हो जाए। मैंने उसे प्यार से कहा एक दिन, जो दूसरों का रास्ता बंद करते हैं उनके आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। अच्छा, उस दिन से खोल दिया। ठीक बात है या नहीं है? कई लोगों को दूसरों के रास्ते बंद करने की बहुत खुशी होती है, रोको ही नहीं, बहुत आगे जा रहे हैं, वो अपने रास्तों को स्वयं ब्लॉक कर रहे हैं। और जो सबके लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं उनके लिए बाबा ने लंबा चौड़ा खुला सफलता का मार्ग बना के रख दिया होता है। तो हमें सबको विघ्नों से मुक्त करना है, करना है या नहीं? तो लंबा काल निर्विघ्न रहेंगे, बाबा से ये वरदान लेंगे और विघ्नों से मुक्त करेंगे। जो मैं बीमारियों की बात बता रहा था डॉक्टर साहब, किशोर भाई, उसमें ये है बाबा का महावाक्य, वो एक संदेश में था 75 में रक्षाबंधन पर, वो मुरलियों में नहीं था इसलिए वो लिखा नहीं गया है, उन दिनों तो कुछ लिखा नहीं जाता था। तुम्हारे सामने बीमार लोगों की भीड़ आएगी, तुम उन्हें दृष्टि देंगे और वो रोग मुक्त होकर वाह वाह करते हुए घर जाएंगे। लेकिन ये काम उनके द्वारा होगा जिन्होंने अपनी स्थिति को संपूर्ण निर्विकारी बनाया होगा। पवित्र वाइब्रेशन जब हमारी आंखों से निकलेंगे, इन पवित्र वाइब्रेशंस में बहुत ज्यादा हीलिंग एनर्जी है। प्योरिटी ही सबसे बड़ी हीलिंग एनर्जी है, जो आजकल डॉक्टर कहते हैं ना, ये अंदर की पावर रही नहीं, क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स, रोगों, हाँ, इम्यूनिटी रही नहीं। क्यों नहीं रही? विकारों के कारण। सारी शक्तियां तो नष्ट कर दी ना। पहले से ही हमारे धर्मों में मान्यता थी, जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा 100 साल निरोग जिएगा। तो ब्रह्मचर्य की शक्ति तो इस इम्यूनिटी को बढ़ाती है ना। वो अलग बात है कि आज खेल बिगड़ चुका है, पानी भी दूषित, भोजन भी दूषित, हवा भी दूषित, तो पवित्र आत्माओं को बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन पवित्रता में ही हीलिंग एनर्जी है। हीलिंग एनर्जी माना रोगों को ठीक करने की शक्ति। जिन्होंने पवित्रता से अपना श्रृंगार किया होगा, संपूर्ण निर्विकारी, यहां पवित्रता से भी अलग शब्द है, सुपीरियर शब्द, निर्विकारी, जिसमें न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, न मैपन, न व्यर्थ, न बुरी भावनाएं, न नफरत, न घृणा, इन सब से जो आत्मा ऊपर उठ गई, उसकी दृष्टि से लोग निरोग होंगे। ये बहुत बड़ी सेवा हमारे सामने तेजी से आती जा रही है। मुश्किल से 2 साल लगेंगे, इसके बाद यही सेवा सबको करनी होगी, डॉक्टर्स और सब जो स्टाफ हैं। डॉक्टर ने किसी को भी ये चीज मिल सकती है। मेरे पास परसों भी एक कुमार आया नीचे, कहा मुझे, चुपचाप बताया, कहा ये बताने की बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताता, केवल आपको बता रहा हूं। वो कुछ समस्याओं से गुजरा बेचारा 5-7 साल, लेकिन हिम्मत उसने इतनी रखी, बाबा का साथ इतना मजबूती से रखा कि हिला नहीं, उसको बहुत हिलाया, माना इम्प्योर बनाने के लिए। कहा मुझे, मैं उसको विजयी रतनी कहता हूं, 2 बार मिला पीछे मुझे, कहा इससे मुझे मुक्ति देने का वरदान मिल गया है। मैंने कहा अभी तो इसे गुप्त रखो, पावर बढ़ाओ, और वो समय आ रहा है जब ये शक्ति बहुत काम करेगी। पहले मैंने सुनाया था, एक गुजरात का भाई, वो तो बुजुर्ग है, उसने मुझे बताया कि अगर कोई बूढ़े हो डॉक्टर और मरना चाहते हो, 85 साल हो गए, 90 साल हो गए, परिवार भी कष्ट पा रहे, वो भी कष्ट पा रहे, चाहते हैं सब ये जाए, वो भी चाहता है जाए, तो मुझे ये वरदान मिल गया है, मैं उन्हें मुक्त कर सकता हूं। मैंने कहा हमें तो नहीं मिला, पर देखो भोले लोगों को मिल गया, बहुत भोला वो, लेकिन योगयुक्त आत्मा, बहुत पवित्र आत्मा, उसके सब परिवार विदेश में है, अकेला ही रहता है, सारा दिन सेवा करता है, रात को सोने घर जाता है। तो बाबा न जाने किस पर मेहरबान, जरूरी नहीं बड़ों पर मेहरबान हो, वो किसी पे भी मेहरबान, हमें पता ही नहीं कौन भगवान की नजरों में हो, किसको उससे विशेष पावर मिल रही हो, किसने उसके दिल को जीत लिया हो। तो हम, मेरा यह शुभ संकल्प है कि हमारे अनसरोवर में 10 ऐसे श्रेष्ठ योगी बन जाएं भाई बहनों में से, जो यहां आने वालों को मुक्ति दें। ये स्थान भी बहुत प्रसिद्ध होने वाला है, जैसे पंड भवन होगा पहले नंबर पे, दूसरे पर ये, और फिर से अंतिवन, ऐसे अच्छे योगी कि दृष्टि दें, वाइब्रेशंस फैलाएं, लोग इस प्रांगण में आए, ठीक होकर वापिस जाएं वाह वाह करते हुए, थोड़ा सा ब्रह्मा भोजन प्रसाद रूप में खाएं, निरोग होकर वापिस जाएं। और ज्ञान सरोवर वालों में शक्ति है, 10 तो यहां श्रेष्ठ योगी हैं, ध्यान देंगे सभी। और हमें किससे मुक्त करना है सबको, हाँ ये भी बहुत बड़ी चीज मेजर साहब ने कही, ये जो बंधन बनते जा रहे हैं सुख संपाप कर्मों के भी, और संबंध तो अब कलयुग के अंत में बंधन बनता जा रहा है, हर घर की ये कहानी हो गई है, कहीं पति पत्नी का संघर्ष है, तो कहीं बच्चों की स्थिति बिगड़ रही है, रहा सा खेल इस मोबाइल ने पूरा कर दिया है, युवकों का तो हाल बिगड़ता जा रहा है, फंसते जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है। हमें इन सब से भी सबको मुक्त करना, और इसके लिए श्रेष्ठ कर्म और आत्मिक दृष्टि। तो ये संबंधों के जो बंधन हैं, इनसे हम मुक्त होते जाएंगे और हमें ये बाबा का बहुत अच्छा वरदान प्राप्त होता जाएगा। और बोलो, किससे मुक्त करना? माताओं का नंबर मैंने, किससे मुक्त करना है सबको? हैं, मोह बस, माताएं इससे क्यों परेशान है? मोह ही थोड़ा ही, सब सोचते हैं माताओं को ही मोह ज्यादा है। ठीक है, अब माताओं ने अपने बच्चों की बहुत पालना की है, प्यार दिया है, कितना मैं तो देखता हूँ, माताएं 5-7 साल तक बच्चों का क्या क्या करती हैं, तो लगाव तो हो जाता है। ये कोई अनहोनी बात, कोई ऐसी खराब बात भी नहीं है। हम इसमें आत्मिक भाव को बहुत बढ़ाते चले। मैं एक चीज अभी सबसे करा रहा हूँ, मैंने बड़ी क्लास में भी नीचे वो बताई, हमारे इस पार्क में भी हमने ये एक सब्जेक्ट लिया इस बार, वृत्ति से वायुमंडल बदलना। तो ये प्रयोग हम हर एक मास के लिए एक दे रहे हैं, 12 मास चलेगा वो प्रोजेक्ट। तो उसमें पहला प्रयोग है, और ये घरों में रहने वाले, ऑफिसों में, अपने बिजनेस में, या कोई टीम वर्क आपके पास है, उसमें सब में ये बहुत अच्छा प्रयोग करें। घर में, मैं घर का एक बता रहा हूं, और सभी भाई बहने जो गृहस्थ में रहते हैं वो इसको करें तो बहुत सुंदर अनुभव होंगे। 2 बार आप अपने घर में बैठ जाएं शांति में, लंबा समय नहीं लगेगा। मैं महान आत्मा हूं, देव कुल की महान आत्मा, इस गुड फीलिंग में स्थित हो जाएं, और घर में सब 5-7-10 जितने लोग हैं, ये आत्माएं हैं, आत्मिक वृत्ति, ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। बस इस फीलिंग में 1 मिनट बैठ जाएं, डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं सभी यहां वाले, और देखें क्या होता है, वाइब्रेशंस अलौकिक होते जाएंगे। हमारी वृत्ति से, वृत्ति माने एटीट्यूड्स, हमारा दृष्टिकोण। अभी दृष्टिकोण में क्या रहता है? ये हमारे बच्चे हैं, ये मेरी बात माने, ये मेरी क्यों नहीं सुनते, तो खुद परेशान, बच्चे परेशान हो या ना हो, माताजी परेशान, बच्चे कहीं मौज मना रहे होंगे, माँ बाप परेशान हो रहे होंगे, बदल दो इसे, ये मेरे बच्चे नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं, ये महान आत्माएं। आप सोच के देखना घरों में, ये महान आत्माएं हैं, ये सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं, और मैं कौन? महान इस देवी विश्व कल्याणकारी हूं। अब जिसको सबका कल्याण करना हो, वो दूसरों के लिए क्या बुरा सोच सकते हैं भला? कल्याण करना है ना, तो सब कुछ बदलता जाएगा। ये बहुत अच्छे अनुभव हम सबको करने हैं। इससे हमें चिंताओं से भी ऊपर उठ जाना होगा। एक इम्पोर्टेंट चीज, हमें संसार को चिंताओं से और भय से मुक्त करना है। ये दोनों मारामारी बन जाएंगी, मारामारी बहुत परेशानी पैदा करेंगी, मोह मानसिक रोग पैदा करेगा। इसलिए सभी, बात माताओं की नहीं, सभी भाई बहने, मोह तो सबको है, अपने से भी है, अपने पदार्थों से भी तो है या नहीं? हमारे पास एक अच्छा सा पेन भी हो, छोटी सी चीज, उससे भी में भी हमारी आसक्ति रहती है। आपके पास अच्छे से जूते हो, उनमें भी आसक्ति रहती है। कोई उठा न ले, बाहर निकाले होंगे, 5 बार याद आएगा, कोई उठा न ले मेरे जूते, होता है नहीं? बड़ी नेचुरल बात है। हम लोग भी जाते हैं क्योंकि हमारे उठते रहते हैं, तो हम बहुत अच्छे पहन के नहीं जाते, भट्टियों में जाते हैं ना, तो अब उन बहनों को कहते हैं इनका प्रबंध जरा अलग रखा दो, हमारे जूते उठा लेते हैं लोग कि ये बड़े अच्छे, एक ने तो इसलिए उठा लिए, उसको किसी ज्योतिषी ने बताया किसी महान पुरुष के यदि तुम जूते उठा लो तो तुम करोड़पति बन जाओगे। अब उसे महान पुरुष में ही दिखाई दिया, और भी बहुत बैठे थे, मेरे जूते उठा लिए, अब न उठा लेना कोई भाई, करोड़पति तो बन गया, फिर 16 साल बाद मेरे वो जूते वापिस करने आया था, लेकिन करोड़पति तो बन गया लेकिन कुमार जीवन खत्म हो गया, फिर संसार में चला गया, ज्ञान योग से मुक्ति हो गई। तो या तो पैसा ले लो या भगवान, एक ही चीज मिलेगी। या तो अपने को महानतम आत्मा बना दो या ये धन के लोभ लालच में पीछे चले जाओ। च्वाइस हमारी है, चूज हमें करना है, क्या हम करें। तो एक महान कर्तव्य हमारी राह देख रहे हैं, सब अपने को चिंतन दें, महान कर्तव्य महान आत्माओं की राह देख रहे हैं। एक बात पे मैं आपको और चिंतन देना चाहता हूं। बाबा एक बात बहुत गहरी कहते हैं, तुम समय के क्रिएटर हो, था ना अभी मुरली में, समय तुम्हारा शिक्षक बने ये अच्छा नहीं रहेगा। तुम्हारी क्रिएशन है वो, तुम्हारी रचना तुम्हारे ऊपर आ जाए ना, जैसे आजकल होता है बच्चे माँ बाप के ऊपर आ जाते हैं, मारने को भी तैयार। तो तुम्हारी रचना है समय, कैसे समय हमारी रचना है चिंतन करेंगे। टाइम को डिफाइन करने की लोगों ने बहुत कोशिश की, व्हाट इज टाइम, टाइम की डेफिनेशन क्या दी जाए, बहुत कठिन डेफिनेशन होगी इसकी, सिंपल भी हो सकती है। समय तो बीतता जाता है, दिन निकलता है छुपता है, रात होती है सवेरा होता है, ये चक्र चल रहा है, मास बीतते हैं साल बीतते हैं, युग बीत गए 5000 साल बीत गए, साइकिल पे साइकिल बीत गया, करोड़ों अरबों साल बीत गए या नहीं। समय तो गतिमान है, लेकिन महान आत्माओं की महान स्थिति समय को भी दिशा प्रदान करती है। महान आत्माओं के महान वाइब्रेशंस समय को समीप लाते हैं, हमारे शक्तिशाली वाइब्रेशंस बुरे समय को भी अच्छे में बदल सकते हैं। हो सकता है या नहीं हेम सिंह, हो सकता है। तो किसी को अगर ऐसा फील हो कि समय थोड़ा बुरा चल रहा है जीवन में, होता है बहुतों को, वो ज्योतिषी कहेंगे राहु की दशा, पता नहीं क्या क्या फलाने की दशा, इसकी दशा, बाबा ने तो उस दिन फाइनल कर दिया था, सब भूल जाओ, तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, अगर इस नशे में रहने लगे तो बाकी सभी दशाएं आप ही खत्म हो जाएंगी। तो मेरा गुड टाइम चल रहा है, बैड टाइम है ही नहीं, थोड़ा बहुत अगर कुछ होता है कर्मों के इफेक्ट के कारण वो पास हो जाएगा, हमारा बहुत सुंदर समय चल रहा है या नहीं। ऐसा सुंदर समय कि भगवान साथ दे रहा है, जीवन की यात्रा में भगवान हमारा साथी बन गया, किसी का फ्रेंड बन गया, किसी का बच्चा, किसी का पति, किसी का माँ बाप, कितना सुंदर समय है। जिस भगवान को पाने के लिए लोगों ने कष्ट झेले या नहीं, मीरा राजमहल छोड़ के चल दी, कई राजपूत आते हैं लड़कियां कन्याएं कहती है हमारे राजपूतों में तो बाहर ही नहीं निकलने देते, कैसे सेंटर पे जाएं। मैं उदाहरण देता हूं, मीरा वो तो रानी भी थी, साधारण राजपूत घर की नहीं, राणा फैमिली की रानी, चल दी ना। अगर किसी को कुछ करना है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, तब उसको बहुत बाधाएं डाली, साथ किसी ने नहीं दिया, लेकिन बाद में तो उसके मंदिर बन गए। तो हम सभी इस समय को अफेक्ट करने वाले हैं, अब आने वाले समय का इफेक्ट हम पे ना हो। निश्चित रूप से विनाश का समय तो बहुत भयानक है, लेकिन हम अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से भयानक समय को भी प्रभाव डालने वाले, उसके बैड इफेक्ट को खत्म करने वाले हो जाएं, इसके लिए हमें बहुत अच्छा योगयुक्त पुण्य कर्मों से भरपूर पवित्रता की शक्ति और इसके श्रृंगार से श्रृंगारे हुए संपूर्ण संतुष्ट आत्माएं, जैसे हमें कुछ नहीं चाहिए, यह मुक्त अवस्था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न संसार से न मनुष्यों से। सेवाएं करते हैं, सेवा की समर्पण, कुछ नहीं चाहिए। सेवाएं भी हमारी कैसी हैं? माल भगवान का, मान लो भंडारा है, सभी भाई बहने भोजन बना रहे, खिला रहे हैं, किसका है माल? माल प्रभु जी का। दुआएं किसे मिले? हमें। और कोई उसमें भी दुआएं न ले? रोटी लेने आए और माता जी डांट लगा दे, इतना खाते हो? रोटी प्रभु जी की, बीच में दुआएं उनको मिल सकती है, खाने वाले उसके बच्चे। लेकिन कई लोग दुआएं लेना भी नहीं जानते। मैं कहा करता था, कई लोग देखते थे, कुछ कुछ करते थे। मैंने कहा, तुम अगर भगवान के माल से दूसरों को सुख नहीं दे सकते, तो जब तुम्हारा माल होगा तो क्या करोगे? शायद दूसरों का भी छीनने लगो। ऐसी आत्माएं राजा तो बन नहीं सकेंगी ना। जो दूसरों को सुख नहीं दे पाती, वो भी प्रभु के माल से, भोलानाथ के भंडारे भरपूर, धन भी उसका तो भोजन भी उसका, हम भी उसके, ज्ञान भी उसका, सब कुछ उसका है ना। तो क्यों ना हम सुख देकर दुआएं ले लें, बीच में माल हमें मिल रहा है मुफ्त में, केवल हमारी भावनाओं से, हमारी श्रेष्ठ स्थिति से, हमारे अच्छे व्यवहार से, सुखदायी नेचर से। तो कितना फायदा हो जाए, सब सुखी हो जाएंगे, तो हम स्वयं मुक्त बनेंगे, मुक्त। और एक अभ्यास बता रहा हूं, अभी जब योग हो तो हम करेंगे। हम रहा करें कुछ समय परम धाम में, फील करेंगे मैं आत्मा परम धाम में हूं, ये मेरा घर है, घर में संपूर्ण आराम और विश्राम होता है, मैं यहाँ संपूर्ण आराम और विश्राम में हूँ, अपनी मुक्त अवस्था में हूँ, संपूर्ण अवस्था में हूँ, मुक्त अवस्था में हूँ, मैं मुक्त हूँ। ये संकल्प अब छोड़ देना है, मैं बंधन में हूँ। जो माताएं भी बंधन में हैं, इस संकल्प को छोड़ दें, मैं बंधन मुक्त हूँ, मैं मुक्त अवस्था में हूँ। तो ये स्थिति आप ही बढ़ती जाएगी। ओम शांति। अभी इसी स्वरूप में बैठेंगे।
आंधी तूफा पल भर तुमको रुकना नहीं। हमारे परम शक्ति है, साथ तुम्हारे परम शक्ति है, माया को तुम्हें हराना है, हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है, मुक्त गगन के पंछी।